बहुत ये रुचिकर विषय है कि हमें जानना है किस गति से जीव किस गति में जाने की योग्यता रखता है, और चारों गतियों में जो मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ गति है उस गति से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं और किस लक्ष्य की सिद्धि कर सकते हैं, ये आपने जाना है कि मनुष्य गति में भी तीर्थंकर भगवान के आने के दो द्वार हैं, या तो स्वर्ग से आते हैं या नरक से आते हैं, और जाने के यानी तीर्थंकर भगवान के जाने का द्वार एक मोक्ष का द्वार है पंचम गति। तो जाने का द्वार एक 25वें दंडक रूप मोक्ष का द्वार है, मोक्ष ही है, जहां जाकर के ये जीव वापिस नहीं आता। तो ये विशेष पदवीधारी मनुष्यों में से सर्वप्रथम तीर्थंकर भगवान के लिए बताया। आगे आप जानेंगे चक्रवर्ती नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र ये स्वर्ग लोक से ही आते हैं, इसलिए इनके आने का द्वार एक ही है। आगे हम चलते हैं बलभद्र, बलभद्र चक्रवर्ती, बलभद्र नारायण प्रतिनारायण ये पदवीधारी होते हैं। तो इन बलभद्रों के लिए कहा है जाने के दो ही द्वार हैं, स्वर्ग या मोक्ष। माने बलभद्र जो पदवीधारी होते हैं, जो नारायण के साथ जिनका निकाचित स्नेह होता है, ऐसे बलभद्र के लिए कहा या तो वो स्वर्ग जाएंगे बलभद्र के पद से या मोक्ष जाएंगे अगर दीक्षा ले लेते हैं और कर्मों का नाश करने में सक्षम हो जाते हैं, क्षपक श्रेणी पर आरोहण कर लेते हैं तो मोक्ष जाते हैं, अन्यथा स्वर्ग जाना तो उनका निश्चित ही रहता है। तो इसलिए स्वर्ग और मोक्ष ये दो द्वार उनके जाने के हैं, क्योंकि ये नियम से तपश्चरण धारण करते हैं। अर्धचक्री अर्थात नारायण और प्रतिनारायण ये नियम से नरक ही जाते हैं, ये इनकी नियति है, क्योंकि ये राज्य में ही मरते हैं, अतः ये उसी ही भाव से मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु अंत में ये नियम से निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अर्थात ये चक्रवर्ती या चक्री उसी भाव से यदि नरक भी गए तो भी कतिपय भावों को धारण करके मोक्ष को अवश्य ही प्राप्त करते हैं। इसलिए चूंकि पदवीधारी पुरुषों को आखिरी में अंत में मोक्ष जाने का नियम है, ये 63 श्लोक पुरुषों की बात हुई जिनका वर्णन आदि पुराण, उत्तर पुराण यानी महापुराण ग्रंथ के अंदर आचार्य श्री जिनसेन स्वामी, आचार्य श्री गुणभद्र स्वामी इन लोगों ने किया है, उसके विषय में आपको विशेष रूप से जानकारी उन ग्रंथों से प्राप्त करना है। अब आगे चलते हैं, जो कुलकर हो जाते हैं या नारद हो जाते हैं या रुद्र हो जाते हैं और कामदेव हो जाते हैं या तीर्थंकर के माता पिता होते हैं, वे भी इन पदों को धारण करने के लिए कुछ भव के बाद मोक्ष को अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि इन पदों को धारण करने वाले जीव बहुत काल तक संसार में भ्रमण नहीं करते, क्योंकि तो महान पुण्य से इन पदवियों को प्राप्त, आप क्या समझते हैं, तीर्थंकर भगवान तो पुण्य के अवतार होते ही हैं, लेकिन उनको जन्म देने वाले जो माता पिता हैं उनकी भी आ करके सौधर्मेंद्र भी उनकी पूजा करते हैं, इसलिए कि तीन लोक के अधिपति भगवान जिनेन्द्र को जन्म देने में वे निमित्त बनते हैं, और ऐसे अनंतानंत तीर्थंकर भगवंतों को अनंत माता पिताओं ने इस अयोध्या नगरी में जन्म दिया है। निश्चित रूप से उन सब लोगों ने अब तक मोक्ष को प्राप्त कर ही लिया होगा, इसलिए कहा कि महान पुण्यशाली होते हैं, भगवंतों के माता पिता भी महान पुण्यशाली होते हैं, इसलिए ज्यादा दिन तक वे संसार में परिभ्रमण नहीं करते। कुलकर 14 होते हैं, नारद 9 होते हैं, रुद्र 11 होते हैं और कामदेव 24 होते हैं। जैसे 24 तीर्थंकर की संख्या निश्चित है, ऐसे कामदेव की संख्या निश्चित है। इस युग में जहां प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हुए, प्रथम चक्रवर्ती भगवान भरत हुए, प्रथम कामदेव भगवान बाहुबली हुए। भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत और बाहुबली थे। बहुत सारी जगहों पर अब तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान की जाती हैं, ऋषभदेव, भरत और बाहुबली। अयोध्या की धरती पर भी आचार्य देशभूषण महाराज की कृपा प्रसाद से ये तीनों भगवान सर्वप्रथम एक साथ विराजमान हुए और इनकी तीनों की पदवी अलग-अलग। और हस्तिनापुर में जिन शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरेनाथ भगवान ने जन्म लिया, उन तीनों तीर्थंकर के तीनों तीनों पदवी एक साथ हुई। देखो ये रेयर केस होता है। तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे। ऐसे कुंतुनाथ, हरेनाथ भगवान तीर्थंकर, कामदेव और चक्रवर्ती तीनों पदों से समन्वित हुए। और देखो योग की बात है, संयोग की बात है कि तीनों तीर्थंकरों के जन्म हस्तिनापुर में हो गए। इस कलिकाल के अंदर हुंडाल सर्पिणी काल दोष के निमित्त से अयोध्या में सभी तीर्थंकर नहीं जन्मे। यही कारण रहा कि तीन तीर्थंकर भगवान हस्तिनापुर में जन्म ले लिए और तीनों ही तीन तीन पदवी के धारक हुए। तो महानुभाव, यहाँ जब हम गतियों से आने जाने के द्वार की ओर चिंतन करते हैं तो लगता है कि अनंत सिद्ध परमेष्ठियों की श्रेणी में हमें भी एक दिन अपना नाम लिखाना है, क्योंकि न जाने कितनी योनियों में हमने जाकर के जन्म धारण किया। देव योनि, मनुष्य योनि और पशु योनि, और नरक में भी न जाने कितनी बार गए, लेकिन अब सम्यक दर्शन मिल गया है तो अब हमारा भी संसार बिल्कुल सीमित हो गया है और एक न एक दिन जल्दी से जल्दी अपने को मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा है। अयोध्या तीर्थ यात्रा जो करते हैं वे नियम से भव्य होते हैं और एक न एक दिन उन्हें मोक्ष जाना निश्चित है। आज आपको यही स्वाध्याय का सार हमने बताया है। आज के दिन भगवान पार्श्वनाथ ने